शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकांतं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं वंदे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं। भक्तजनों, अखिल विश्व के आधार इस विष्णु रूप की वंदना के बाद आइए पहले सत्यनारायण व्रत और कथा का महात्म्य और विधान समझ लें। ऋषियों के तप और खोज का निचोड़ है कि सत्य से ही नवग्रह प्रकाशित हैं, सत्य पर ही सारा जगत टिका है, सत्य से श्रेष्ठ न कोई धर्म है, न यज्ञ दान, न कोई कर्म। और सत्य के महाफल का वर्णन सत्यनारायण कथा में स्पष्ट कर दिया गया है कि सत्य ही नारायण है और नारायण ही सत्य। सत्यनारायण की कथा का ध्येय सत्य परायण होना है, सत्य का आचरण करना है, जो कहना है, जिसका व्रत संकल्प लिया है, उसे पूरे मनोयोग से पूर्ण करना है। सत्यनारायण की कथा में भगवान विष्णु ने महर्षि नारद को दुखों से छूटने के लिए सत्य का व्रत बताया है। नारद ने उस व्रत को भली भांति जानने के लिए चार प्रश्न किए। किम फलम, सत्य व्रत का फल क्या है? किम विधानम, विधान क्या है इसका? कदा कार्यं हि तद्व्रतम, यह व्रत किस दिन और किस समय करना चाहिए? कृतम केनैव तद्व्रतम, और यह व्रत किसने किया? भगवान श्री विष्णु ने संक्षेप में चारों प्रश्नों के उत्तर दिए। इसका फल, व्रत करने से मनुष्य सब दुखों से छूट जाता है, दिन दूना सौभाग्य बढ़ता है, संतान का सुख मिलता है, विजय साथ देती है और सब प्रकार जीवन का विकास होता है। विधान, सत्य में स्थित होकर सत्य बोलने का संकल्प करके धर्म में तत्पर होकर सत्यनारायण की कथा के लिए बंधु बांधवों सहित बैठना चाहिए। विद्वान और सदाचारी ब्राह्मण द्वारा कथा सुनने से सत्य में श्रद्धा जमती है। सत्यनारायण के पूजन के लिए गेहूं के आटे में शक्कर मिलाकर प्रसाद बनाना चाहिए। घी, दूध, केला तथा अन्य सात्विक पदार्थों का भोग लगाने की प्रथा है। प्रातःकाल पवित्र होकर स्नान ध्यान करने के पश्चात सत्य बोलने का संकल्प करके प्रसन्नता पूर्वक व्रत करना चाहिए। सायंकाल के समय पंचामृत फल आदि से पूजन करके सत्य की शरण लेनी चाहिए। सत्यनारायण के व्रत की पूर्णता न किसी द्रव्य से होती है और न किसी बाहरी साधन से। स्वयं श्री विष्णु भगवान ने शतानंद को यह परामर्श दिया है कि आयाम मम विप्रेंद्र बहु नापेक्षितम धनम। हे विप्र, मेरी पूजा के लिए द्रव्य और सामग्रियां आवश्यक नहीं है, भाव, श्रद्धा, तत्परता और संयम पूजा तथा व्रत के दृढ़ अंग है। जैसे खंभों पर भवन खड़ा होता है, उसी प्रकार व्रत और पूजा के ये चार स्तंभ हैं। सामग्री और विधि से भाव अवश्य बनता है, उत्साह प्राप्त होता है और भक्तिमय वातावरण से शांति तथा प्रसाद मिलता है। इसीलिए सात्विक अन्न और दूध, घी का नैवेद्य श्रेयस्कर कहा गया है। व्रत किस दिन और किस समय करना चाहिए? भगवान ने इस प्रश्न का उत्तर भी एक ही वाक्य में दिया, यस्मिन कस्मिन दिने मर्त्यो भक्ति श्रद्धा समन्विता। भक्ति और श्रद्धा से हृदय को भरकर किसी भी दिन सत्य का व्रत किया जा सकता है। पूर्णिमा के दिन सत्यनारायण की कथा और व्रत विशेष रूप से प्रचलित है। यह व्रत किसने किया? इसके उत्तर में सत्यनारायण की कथा के दृष्टांत हैं। शतानंद ब्राह्मण ने अपने लिए किसी के सन्मुख दीन होकर हाथ फैलाना छोड़ दिया। उसे जो कुछ मिला उसने सत्य के अर्चन में लगाया और जीवन भर सत्य का व्रती रहकर वो मुक्त हो गया। एक साधारण सा लकड़ी बेचने वाला भील सत्य को धारण करके पूर्ण काम हुआ। राजा उल्कामुख सत्य का आश्रय लेकर प्रजा पालन करते हुए परम तपस्वी सौभाग्यशाली राजा दशरथ के रूप में अवतरित हुआ, जिसके घर राम रघुराई आए। सत्य का व्रत टालने वाले अथवा सत्य की अवहेलना करने वाले साधु नामक व्यापारी का सर्वस्व छिन गया, उसे चोरों जैसा दंड मिला। सत्य की शरण में जाकर वह छूटा, परंतु सत्य के अपमान से फिर दुखी हुआ और अंत में सत्य का आश्रय लेकर ही उसे सुख मिला। सत्य के व्रत में भूल की क्षमा नहीं है। सत्य तो प्रत्येक दशा में सत्यता चाहता है। कलावती ने सत्य की अवहेलना की, मोहित होकर उसने सत्य का प्रसाद छोड़ा, इसीलिए उसने अपना संसार डूबता हुआ देखा। राजा तुंगध्वज ने अभिमान से सत्य का अनादर किया, फलस्वरूप उसे घोर कष्ट हुआ। सत्य का व्रत लेते ही उसके कष्ट दूर हो गए। इन सब कथाओं का प्रयोजन स्पष्ट है, सत्य में जीवन है, असत्य में मृत्यु। देवताओं ने असत्य को छोड़कर सदा सत्य को अपनाया है, इसीलिए वे अमर हैं। मूल व्रत सत्य का है। सत्य को धारण करने के लिए श्रेष्ठ जनों की कथाएं सुनी जाती हैं। ऐसा जान पड़ता है कि जिसने इस कथा को जाना और व्रत करके सत्यनारायण को प्राप्त किया, उसी की कथा सत्यनारायण की कथा में जुड़ गई है। तो भक्तजनों, महात्म्य और विधान के बाद अब हम समझें पूजा विधि को। श्रद्धा और विश्वास तथा विधि पूर्वक पूजा से मन पवित्र होता है और पवित्र मन ही सत्य में टिकता है। जब तक मनुष्य अपने सत्य स्वरूप को नहीं जानता, नहीं पहचानता, तभी तक हैं ये दुख शोक, पाप ताप, मोह द्रोह अहंकार, मद लोभ विकार। परमेश्वर तो पवित्रता में निवास करता है और पवित्र होने के लिए एकमात्र साधन है परमेश्वर का स्मरण। ओम अपवित्रः पवित्रो वा सर्वावस्थांगतोऽपि वा यस्मरेत् पुण्डरीकाक्षं सर्ववायाभ्यंतरा शुचिः। जन पवित्र अवस्था में हो या अपवित्र, पुण्डरीकाक्ष श्री हरि के स्मरण मात्र से अंदर बाहर सब पवित्र हो जाता है। सो ये मंत्र पढ़ते हुए पुष्प या पान के पत्ते से अपने शरीर पर जल छिड़किए, उसके बाद मंत्रों के साथ साथ आचमन कीजिए। बाएं हाथ से दाहिनी अंजुली में जल लेकर प्रत्येक मंत्र के बाद वो जल पी लीजिए। ओम केशवाय नमः, भव भय हरि केशव को नमस्कार। ओम माधवाय नमः, सुख और श्री के दाता माधव को नमस्कार। ओम नारायणाय नमः, इस जगत के कर्ता धर्ता भर्ता को नमस्कार। तीनों तापों के हर्ता मंगलकारी परमेश्वर की उपस्थिति से आनंद और मनवांछित फल मिलेगा। तो आइए भक्तजनों, एक बार फिर श्री हरि के चतुर्भुज रूप का स्मरण करें।
शुक्लांबरधरं देवं शुक्लवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये। लाभस्तेषां जयस्तेषां कुतस्तेषां पराजयः। येषामिन्दी वरश्यामो हृदयस्थो जनार्दनः। यत्र योगेश्वरः कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरः। तत्र श्रीर्विजयो भूतिर् ध्रुवा नीतिर्मतिर्मम।
श्री हरि के ध्यान से सब विघ्न शांत हो जाते हैं। जिसके हृदय में जनार्दन बसे हैं उसी की जय है, उसी का लाभ है, पराजय कैसी। जहां योगेश्वर कृष्ण हैं, अर्जुन सा धनुर्धर है, वहां तो जय ही जय निश्चित है। तो आइए अब श्री सत्यनारायण व्रत का संकल्प लें। दाहिने हाथ में अक्षत पुष्प गंध जल और दक्षिणा लेकर संकल्प के मंत्र में जहां जहां अमुक संवत्सरे अमुक क्षेत्रे अमुक मासे अमुक वासरे अमुक नामा हम आता है, आप संवत्सर का नाम, उस जगह का नाम जहां आप रहते हैं, महीने का नाम, दिन का नाम और अपना नाम मन में बोलते जाएं। ओम नमः परमात्मने श्री पुरुषोत्तमाय श्री विष्णु राज्ञया प्रवर्तमाने ब्रह्मणो द्वितीये परार्धे श्री श्वेतवाराह कल्पे वैवस्वत मन्वंतरे अष्टाविंशतितमे कलियुगे प्रथमचरणे जम्बूद्वीपे भरतखंडे आर्यावर्तैक देशांतर्गते अमुक क्षेत्रे अमुक संवत्सरे अमुक मासे अमुक पक्षे अमुक तिथौ अमुक वासरे यथा लग्न मुहूर्त योग कर्णान्विते अमुक नामाहम सर्वविध पीड़ा निवृत्ति पूर्वक विपुल पुत्र पौत्राद्यनवच्छिन्न धनधान्य समृद्ध्यर्थम सकलस्य जगतः कल्याणार्थंच गणपति नवग्रहादि पूजन पूर्वकम श्री सत्यनारायण पूजनम करिष्ये। हाथ में लिए हुए चावल पुष्प गंध जल दक्षिणा आदि को किसी पात्र में छोड़ दीजिए। अब श्री गणपति का ध्यान तथा आवाहन कीजिए। विघ्नेश्वराय वरदाय सुरप्रियाय लंबोदराय सकलाय जगद्विताय नागाननाय श्रुतियज्ञ विभूषिताय गौरी सुताय गणनाथ नमो नमस्ते। ओं भूर्भुवस्वः गणपते इहागच्छ इहातिष्ठ सुप्रतिष्ठो भव मम पूजां ग्रहाण। ओं गणनान्त्वा गणपते ग्वं हवामहे प्रियाणान्त्वा प्रियपते ग्वं हवामहे निधिनान्त्वा निधिपते ग्वं हवामहे वसो मम आहमजानि गर्भधमात् त्वमजासि गर्भधम। हे विघ्न नियंता दुखहर्ता हे देवों के प्रिय लंबोदर भवभयहारी हे गिरिजानंदन यज्ञ विभूषित श्रुतिधारी हे मंगलकारी आपको बारंबार नमस्कार है। हे देव आइए विराजिए पूजा स्वीकार कीजिए। हे गणपति हे प्रियपति हे निधिपति बुद्धि विधायक प्रिय वस्तु प्रदायक नव निधिदायक हम आपका श्रद्धा पूर्वक आवाहन करते हैं। अब आपको षोडशोपचार पूजन करना है जिसमें चरण प्रक्षालन आचमन अर्घ्य और स्नान के लिए जल मंगल वस्त्र अक्षत पुष्प धूप दीप नैवेद्य ऋतुफल तांबूल और दक्षिणा आदि गजानन को समर्पित करना है। ओम पाद्यम समर्पयामि ओम अर्घ्यम समर्पयामि ओम माचमनीयम समर्पयामि ओम स्नानीयम समर्पयामि ओम मांगलिक वस्त्रम समर्पयामि ओम गंधम समर्पयामि ओम अक्षताम समर्पयामि ओम पुष्पाणि समर्पयामि ओम धूपम समर्पयामि ओम दीपम समर्पयामि ओम नैवेद्यम समर्पयामि ओम आचमनीयम समर्पयामि ओम तांबूलम समर्पयामि ओम फलानि समर्पयामि ओम दक्षिणाम समर्पयामि ओम पुष्पांजलिम समर्पयामि। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। श्री गणेश पूजन के बाद अब कलश पूजन। ओम कलशस्य मुखे विष्णु कंठे रुद्र समाश्रितः मूले त्वस्य स्थितो ब्रह्मा मध्ये मातृगणा स्मृताः कुक्षौ तु सागराः सप्त सप्त द्वीपा वसुंधरा ऋग्वेदोथ यजुर्वेदः साम वेदो हि अथर्वणः अंगैश्च सहिताः सर्वे कलशन्तु समाश्रिता शान्तिः पुष्टिश्च गायत्री सावित्री कलशे स्थिता आयान्तु मम शान्त्यर्थम् दुरित क्षयकारकाः। ओम भूर्भुवस्वः कलशाधिष्ठात्रियो देवता इहागच्छन्तु इहातिष्ठन्तु सुप्रतिष्ठा भवन्तु मम पूजां गृह्णन्तु। कलश के मुख में हे विष्णु आप बैठे और कंठ में शिव, मूल में ब्रह्मा, मध्य में मातृगण, कुक्ष यानी कोख में वसुंधरा, सप्तद्वीप सागर और चारों वेद विराजे और कलश के अंग अंग में सुखदाई देवगण, शांति पुष्टि गायत्री और सावित्री इसमें प्रवेश करें और मेरे पापों का नाश कर अक्षय शांति प्रकाश भर दें। हे देवो इस घट में आकर मेरी पूजा स्वीकार करो। अब आप नवग्रह पूजन करेंगे। किसी काठ के पटरे पर सफेद चादर बिछाकर चावलों की वेदी बनाइए। 9 सुपारियों को नवग्रह के रूप में रखकर मौली से लपेटिए। चंदन पुष्प गंधा आदि अर्पित कीजिए और नवग्रह पूजन करिए। ओम भूर्भुवस्वः सूर्य इहागच्छ इहातिष्ठ सुप्रतिष्ठो भव मव पूजां ग्रहाण। हे सूर्यदेव यहां आइए, यहां विराजिए, मेरी पूजा स्वीकार कीजिए। ओम भूर्भुवस्वः सोम इहागच्छ इहातिष्ठ सुप्रतिष्ठो भव मम पूजां ग्रहाण। हे चंद्रदेव हे सोम यहां आइए, यहां विराजिए, मेरा पूजन स्वीकार कीजिए। ओम भूर्भुवस्वः भौम इहागच्छ इहातिष्ठ सुप्रतिष्ठो भव मम पूजां ग्रहाण। हे भौम हे मंगल आप यहां आए, यहां विराजें, मेरी पूजा स्वीकार करें। ओम भूर्भुवस्वः बुध इहागच्छ इहातिष्ठ सुप्रतिष्ठो भव मम पूजां गृहाण। हे बुधदेव आप यहां आए, यहां विराजें, मेरी पूजा स्वीकार करें। ओम भूर्भुवस्वः बृहस्पते इहागच्छ इहातिष्ठ सुप्रतिष्ठो भव मम पूजां गृहाण। हे बृहस्पति हे देवगुरु यहां आए, यहां विराजें, मेरी पूजा स्वीकार करें। ओम भूर्भुवस्वः शुक्र इहागच्छ इहातिष्ठ सुप्रतिष्ठो भव मम पूजां गृहाण। हे शुक्राचार्य आप यहां आए, यहां विराजें, मेरी पूजा स्वीकार करें। ओम भूर्भुवस्वः शनि इहागच्छ इहातिष्ठ सुप्रतिष्ठो भव। हे शनिदेव आप यहां आए, यहां विराजें, मेरी पूजा स्वीकार करें। ओम भूर्भुवस्वः राहु इहागच्छ इहातिष्ठ सुप्रतिष्ठो भव मम पूजां गृहाण। हे राहु आप यहां आए, यहां विराजें, मेरी पूजा स्वीकार करें। ओम भूर्भुवस्वः केतो इहागच्छ इहातिष्ठ सुप्रतिष्ठो भव मम पूजां गृहाण। हे केतु आप यहां आए, यहां विराजें, मेरी पूजा स्वीकार करें। नवग्रह स्थापना के बाद नवग्रह षोडशोपचार पूजन। ओम पाद्यम समर्पयामि, ओम अर्घ्यम समर्पयामि, ओम आचमनीयम समर्पयामि, ओम स्नानीयम समर्पयामि, ओम मांगलिक वस्त्रम समर्पयामि, ओम गंधम समर्पयामि, ओम अक्षताम समर्पयामि, ओम पुष्पाणि समर्पयामि, ओम धूपम समर्पयामि, ओम दीपम समर्पयामि, ओम नैवेद्यम समर्पयामि, ओम आचमनीयम समर्पयामि, ओम तांबूलम समर्पयामि, ओम फलानि समर्पयामि, दक्षिणाम समर्पयामि, ओम पुष्पांजलिम समर्पयामि। प्रत्येक देवता का ध्यान और आवाहन करके उपरोक्त मंत्रों से षोडशोपचार पूजन करना चाहिए। हे नवग्रह देव आपसे ही सारा ब्रह्मांड चलायमान है, हमारे जीवन को आलोक दो, शत्रु रहित करो, अच्छी वर्षा और अन्न दो, हम सबके प्रेम पात्र बने, हमें सद्बुद्धि दो, संजीवनी शक्ति दो, हमारे रोग शोक नष्ट करो, सही राह दिखाओ, अज्ञान से मुक्ति दिलाओ। नवग्रह पूजन के बाद अब आइए एकाग्र मन से श्री सत्यनारायण का ध्यान करें। ध्यायेत सत्यम गुणातीतम गुणत्रय समन्वितम लोकनाथम त्रिलोकेशम कौसुभाभरणम हरिम नीलवर्णम पीतवस्त्रम श्रीवत्स्यपदभूषितम गोविंदम गोकुलानंदम ब्रह्माद्यैरभिवंदितम। ओम विष्णो रराटमसि विष्णो स्नत्रेस्थो विष्णो स्यूरसि विष्णो ध्रुवोसि वैष्णवसि विष्णवेत्वा ओम भूर्भुवस्वः विष्णो इहागच्छ इहातिष्ठ सुप्रतिष्ठो भव मम पूजाम गृहाण। हे ब्रह्मादिक देवों से वंदित, हे परमेश्वर, तुम्हारे श्री चरणों में हमारा ध्यान लगे। हे विष्णु, हे नारायण, आप यहां आए, यहां विराजें, मेरी पूजा स्वीकार करें। षोडशोपचार पूजन मंत्र। नारायण नमस्तेस्तु भव दुख निवारक पाद्यम गृहाण देवेश मम सौख्यम विवर्धय पाद्यम समर्पयामि व्यक्ता व्यक्त स्वरूपाय ऋषि कपतये नमः। मया निवेदितो भक्त्या अर्घ्योयम् प्रतिगृह्यताम् अर्घ्यम् समर्पयामि सर्वतीर्थम् समायुक्तम् सुगंधिम् निर्मलम् जलम् तदिदम् कल्पितम् देव सम्यगाचम्यताम् त्वया आचमनीयम् समर्पयामि स्नानम् शुद्धोदकैर्देव गृहाण पुरुषोत्तम अनाथनाथ सर्वज्ञ नारायण जनार्दन स्नानम् समर्पयामि पयोदधिघृतम् चैव मधुच शर्करायुतम् पंचामृतम् मया नीतम् स्नानार्थम् प्रतिगृह्यताम् पंचामृत स्नानम् समर्पयामि मंदाकिन्यास यद्वारि सर्वपापहरम् शुभम् तदिदम् कल्पितम् देव स्नानार्थम् प्रतिगृह्यताम् शुद्धोदक स्नानम् समर्पयामि वेदसूक्त समायुक्ते यज्ञसाम समन्विते सर्ववर्णप्रदे देव वाससी प्रतिगृह्यताम् वस्त्रम् समर्पयामि ब्रह्मा विष्णु महेशेन निर्मितं ब्रह्मसूत्रकं यज्ञोपवीतदानेन प्रियतां कमलापतिः यज्ञोपवीतं समर्पयामि श्रीखण्डं चन्दनं दिव्यं गन्धाढ्यं सुमनोहरं विलेपनं सुरश्रेष्ठ चन्दनं प्रतिगृह्यतां गन्धं समर्पयामि मल्लकादिसुगन्धीनि मालत्यादीनि वै प्रभो मया हृतानि पूजार्थं पुष्पाणि प्रतिगृह्यतां पुष्पाणि समर्पयामि वनस्पतिरसोद्भूतो गन्धाढ्यो गन्ध उत्तमः आघ्रेयस्तर्वदेवानां धूपोऽयं प्रतिगृह्यतां धूपं समर्पयामि साज्यञ्च वर्तिसंयुक्तं वह्निना योजितं मया दीपं गृहाणि देवेश त्रैलोक्यतिमिरापः दीपं समर्पयामि हृदि पक्वं अविष्यान्नं पायसञ्च सशर्करं नानाविधञ्च नैवेद्यं विष्णो मे प्रतिगृह्यतां नैवेद्यं समर्पयामि सर्वपापहरं दिव्यं गांगेय निर्मलं जलम् आचमनं मया दत्तं गृह्यतां पुरुषोत्तम आचमनीयं समर्पयामि इदं फलं मया देव स्थापितं पुरतस्तव तेन मे सफला वाप्तिर् भवेत् जन्मनि जन्मनि फलानि समर्पयामि पुंगीफलं महद्दिव्यं नागिवल्लीदलैर्युतं एलाचूर्णादिसंयुक्तं ताम्बूलं प्रतिगृह्यतां ताम्बूलं समर्पयामि हिरण्यगर्भगर्भस्थं हेमबीजं विभावसोः अनन्तपुण्यफलदमतः सुशान्तिः प्रयच्छ मे दक्षिणां समर्पयामि चन्द्रादित्यौ च धरणि विद्युदग्निस्तथैव च त्वमेव सर्वज्योतिष आर्तिक्यं प्रतिगृह्यताम् आर्तिक्यं समर्पयामि। अब हाथों में पुष्प लेकर भगवान विष्णु को सत्यनारायण को पुष्पांजलि अर्पित कीजिए। यन्मया भक्तियुक्तेन पत्रं पुष्पं फलं जलं निवेदितं च नैवेद्यं तद्गृहाणानुकम्पया मन्त्रहीनं क्रियाहीनं भक्तिहीनं जनार्दन यत्पूजितं मया देव परिपूर्णं तदस्तु मे अमोघं पुण्डरीकाक्षं
नृसिंहं दैत्यसूदनं ऋषिकेशं जगन्नाथं वागीशं वरदायकं गुणत्रयं गुणातीतं गोविंदं गरुड़ध्वजं जनार्दनं जनातीतं जानकीवल्लभं हरिं प्रणमामि सदा भक्त्या नारायणमतः परं दुर्गमे विषमे घोरे शत्रुभिः परिपीडिते निस्तारयस्व सर्वेषु तथा निष्ठभयेषु च नामान्येतानि संकीर्त्य ईप्सितं फलमाप्नुयात् सत्यनारायणं देवं वन्देहं कामदं प्रभुं लीलया विततं विश्वं येन तस्मै नमो नमः।
बोलो श्री सत्यनारायण भगवान की। दरिद्रो लभते वित्तं बद्धो मुच्येत बंधनात् भीतो भयात् प्रमुच्येत सत्यमेव न संशय। इसमें तिलमात्र भी संशय नहीं कि सत्य के व्रत से दरिद्री धनवान बनता है। बंधे हुए के बंधन टूट जाते हैं और भयभीत मनुष्य भय संकट से छूट जाता है। आइए अब शुभ मंगलदायक पाप ताप नाशक भगवान श्री सत्यनारायण की कथा का श्रवण करें।
तो भक्तजनों, एक समय नैमिषारण्य तीर्थ में 88,000 ऋषि एकत्र हुए और उन्होंने सर्वज्ञ श्री सूत जी से पूछा कि हे मुनिराज, कलयुग में वेद विद्या रहित मनुष्यों को कैसे भक्ति प्राप्त हो और उनका कैसे कल्याण हो? कोई ऐसा उपाय बताइए कि थोड़े किए से ही पुण्य प्राप्त हो जाए तथा मनवांछित फल मिले। सर्वज्ञ सूत जी ने कहा कि हे वैष्णव में पूज्य ऋषियों, आपने सब प्राणियों के हित की बात पूछी है, सो मैं आपको वो बताता हूं जो महर्षि नारद ने श्री नारायण से पूछा था और श्री नारायण ने जो उसका उत्तर दिया था। ऐसा हुआ कि एक बार नारद जी दूसरों के हित की इच्छा से अनेक लोकों में भ्रमण करते मर्त्यलोक में आ पहुंचे। वहां पहुंचकर मनुष्यों को अपने ही अनेक कर्मों द्वारा पीड़ित देखकर नारद जी बड़े दुखी हुए। सोचने लगे, ऐसा कौन सा उपाय है जिससे मनुष्यों के इन दुखों का नाश हो? और इस तरह इस समस्या पर विचार करते करते वो विष्णु लोक पहुंच गए। देवों के ईश चतुर्भुज श्री नारायण की स्तुति करने लगे कि हे प्रभो, आप अनंत हैं, आप ही भक्तों के दुख दूर करने वाले हैं, सर्वशक्तियों के आप भंडार हैं। हे नाथ, मैं आपको बारंबार नमस्कार करता हूं। स्तुति से करुणा सागर द्रवित हो गए। बोले, क्या बात है नारद, जो मन में है कह डालो, मैं अपने भक्तों को व्याकुल नहीं देख सकता। सो नारद जी ने कहा कि प्रभो, आपसे क्या छुपा है? मृत्युलोक में सभी मनुष्य अपने अपने कर्मों द्वारा अनेक कष्ट पा रहे हैं, कोई ऐसा सरल उपाय बताइए जिससे वो उन कष्टों से त्राण पा सके। श्री नारायण ने कहा कि हे नारद, तुमने सबकी भलाई के लिए जो मुझसे पूछा है, उसके उत्तर में मैं तुम्हें एक ऐसा उपाय बता रहा हूं जिससे मनुष्य मोह लोभ के बंधनों से छूट जाता है। वो एक ऐसा व्रत है जो स्वर्ग तथा मृत्युलोक दोनों में दुर्लभ है। तो सत्यनारायण का वह व्रत यदि मनुष्य श्रद्धा और विधिपूर्वक करे तो जीवन के अंत में मोक्ष पद को प्राप्त कर सकता है। यह सुनकर नारद बोले कि हे प्रभो, इसका फल और विधि विधान विस्तार पूर्वक बताइए। श्री नारायण ने कहा, इस व्रत का पालन करने से सारे संकट कट जाते हैं, सर्वत्र विजय प्राप्त होती है, संतान और सौभाग्य देने वाला, धन धान्य बढ़ाने वाला यह व्रत संध्या समय धर्मपरायण होकर ब्राह्मणों और बंधु बांधवों सहित किसी भी दिन किया जा सकता है। घी, दूध, दही, मधु, शर्करा का पंचामृत बनाओ तथा सवा सेर आटे की पंजीरी, पके केले का भक्तिभाव से पूजन के बाद भोग लगाओ। ये न हो सके तो चावल गुड़ भी सर्वथा उचित है, अर्थात भक्ति श्रद्धा के साथ जो भी अपनी सामर्थ्य के अनुसार हो सके वो करो। भगवान सत्यदेव उसी से प्रसन्न हो जाएंगे। व्रत पूजन के बाद कथा सुनकर अपने प्रियजनों परिजनों को यथाशक्ति जो दे सको दो। ब्राह्मणों और बंधु बांधवों को भोजन कराओ, दक्षिणा दो और फिर स्वयं प्रसाद लेकर प्रभु का गुणानुवाद गाओ, कीर्तन करो, प्रभु को धन्यवाद दो। उसके पश्चात सत्य को हृदय में धारण कर अपने अपने कार्यों में लगो। कलयुग में धरती पर सुख शांति और सौभाग्य का इससे अधिक सरल उपाय कोई नहीं है नारद। इति श्री स्कंद पुराणे रेवाखंडे श्री सत्यनारायण व्रत कथायाम प्रथमोध्याय। बोलो श्री सत्यनारायण भगवान की जय। सूत जी ने कहा, नारद नारायण संवाद के बाद अब मैं तुम्हें सुनाता हूं ऋषियों उन व्यक्तियों की कथा जिन्होंने पहले इस व्रत को किया था। काशी नगरी में एक अत्यंत निर्धन ब्राह्मण रहता था, शतानंद। हर दिन भूखा प्यासा, बेचैन, इधर उधर भिक्षा के लिए मारा मारा फिरता, लेकिन उसे कोई कुछ नहीं देता। ब्राह्मणों के प्रति अधिक प्रेम भाव रखने वाले श्री नारायण ब्राह्मण को इस तरह कष्ट पाते देख द्रवित हो गए और एक बूढ़े ब्राह्मण का वेश धारण कर उसके पास आकर बोले, तुम्हें क्या कष्ट है विप्र, क्यों इधर उधर व्यर्थ भटकते फिरते हो? ब्राह्मण बोला, निर्धन हूं, लाचार हूं, भिक्षा न मांगूं तो और क्या करूं? धनिकों के द्वार पर जाता हूं फिर भी भिक्षा नहीं मिलती, अब आप ही कहें मैं क्या करूं? बूढ़े ब्राह्मण का रूप धारे भगवान बोले, भिक्षा की वृत्ति त्याग दो, सत्यनारायण का स्मरण करो, उनसे मांगो, वो तुम्हें मनमांगा देंगे। सत्य का व्रत पूजन करो, तुम्हारे सारे संताप कट जाएंगे। और फिर व्रत पूजन का विधि विधान बताकर बूढ़े ब्राह्मण रूपी भगवान अंतर्धान हो गए। शतानंद चकित विस्मित सारी रात न सो सका। उसके मन में यही विचार बारंबार उठ रहा था कि प्रातः काल होते ही वो बूढ़े ब्राह्मण द्वारा बताए हुए व्रत का संकल्प लेगा, और उसने प्रातः काल होने पर वैसा ही किया। फिर तो क्या, उसे उस दिन बिन मांगे ही प्रचुर धन की प्राप्ति हुई, जिससे उसने अपने भाई बंधुओं के साथ सत्यनारायण का व्रत और पूजन किया। इस तरह सत्य व्रत के प्रभाव से वह निर्धन सब प्रकार से सुखी और धनवान हो गया। फिर तो हर मास वो सत्यनारायण का व्रत और पूजन करता, जिससे उसके सभी संताप कटे और अंत में वह मुक्ति को प्राप्त हुआ। सूत जी ने कहा कि ऐसा फलदायी है यह सत्यनारायण व्रत, तो हे मुनिवरो, जो भी भगवान विष्णु ने नारद जी को बताया वो सब मैंने तुम्हें सुना दिया, अब कहो और क्या सुनने की इच्छा है? ऋषि बोले, अब हमें यह बताइए कि शतानंद से जानकर किस किस ने धरती पर इस व्रत को किया। सूत जी ने कहा कि सुनो ऋषियों, प्रेम निमग्न होकर सुनो। एक दिन जब शतानंद अपने व्रत पूजन में लीन था, तभी उसके घर एक मलिन लकड़हारा प्यासा थका हारा आ पहुंचा। लकड़ियां बाहर रखकर वो शतानंद के घर के अंदर गया और झुककर बड़ी ही विनय से बोला, ये आप क्या कर रहे हैं, इसका क्या पुण्य प्रताप है सो मुझसे कहें। शतानंद ने सब कुछ बड़े प्रेम से कह सुनाया। बोला, जो कुछ आज मेरे पास है सब कुछ इस सत्य व्रत के प्रताप से ही है। शतानंद से सारी बात समझकर प्रसाद लेकर प्रसन्न मन वो लकड़हारा अपनी लकड़ियां सिर पे रख नगर की ओर निकल गया। राह में चलते चलते सत्यदेव का चिंतन कर रहा था वो, जितना भी धन पाऊंगा उस सबसे मैं सत्यदेव का व्रत और पूजन करूंगा। तो जैसे ही वो धनिकों की नगरी में पहुंचा, उसकी सारी लकड़ियां बिक गईं और वो भी दुगने दामों पर। परम प्रसन्न भील ने दूध घी चीनी आटा और पके हुए केले लिए, सभी सवाए सवाए। उसने उसी दिन अपने घर के आस पड़ोस के लोगों को बुलाकर श्री सत्यनारायण का व्रत पूजन विधि विधान और श्रद्धा से किया, जिसके प्रभाव से वो संतति संपत्ति विजय और कीर्ति पाकर अंत में वैकुंठ धाम को प्राप्त हुआ। इति श्री स्कंद पुराणे रेवाखंडे श्री सत्यनारायण व्रत कथायां द्वितीयोध्याय। बोलो श्री सत्यनारायण भगवान की
जय।
इसके बाद सूत जी ने कहा कि हे मुनियों, अब आगे की कथा सुनो। उल्कामुख नाम का एक राजा था, बड़ा ही सत्यवक्ता जितेंद्रिय और बुद्धिमान। हर दिन देवस्थानों में जाता, निर्धनों और विप्रों को धन देता तथा उनके कष्ट दूर करता। एक बार वो अपनी सुमुखी पत्नी के साथ भद्रशिला नदी के तट पर श्री सत्यनारायण का व्रत और पूजन कर रहा था। उसी समय साधु नाम का वैश्य व्यापार हेतु अपार धन राशि के साथ नाव से उतरा, नाव किनारे पर खड़ी की और जहां राजा पूजन कर रहा था वहां पहुंचकर उसने राजा से पूछा कि भक्तिभाव से आप किस देवता का पूजन कर रहे हैं। राजा ने कहा, स्वजनों सहित संतति की कामना से मैं सर्वेश्वर सत्यदेव का पूजन कर रहा हूं। राजा की बात सुनकर साधु बोला, मुझे इसकी विधि बताइए, मेरे भी संतान नहीं है, मैं भी संतति के लिए यह व्रत पूजन करूंगा। राजा से व्रत पूजन के विधि विधान को जान अपने व्यापार से निवृत्त होकर जब साधु वैश्य घर लौटा तो उसने अपनी पत्नी को सुख संपत्ति और संतति देने वाली सत्यनारायण व्रत कथा के विषय में सब कुछ बता दिया और निश्चय किया कि वो भी संतान होने पर श्री सत्यनारायण का व्रत और पूजन करेगा। इच्छा प्रभु की, एक दिन प्रमुदित लीलावती संतान की कामना से पति के साथ सांसारिक धर्म में प्रवृत्त हुई और श्री सत्यनारायण स्वामी की कृपा से गर्भवती हो गई। 10 महीने बाद उसके घर एक सुंदर कन्या ने जन्म लिया। कन्या भी ऐसी जो शुक्ल पक्ष के चंद्र की कला जैसी बढ़ने लगी और इसी से उसका नाम कलावती रखा गया। तभी एक दिन लीलावती ने अपने पति साधु वैश्य को उसका संकल्प याद कराया। साधु वैश्य वणिक वृत्ति का आदमी टहल गया और अरे ऐसी जल्दी भी क्या है, जब इसका विवाह होगा तब एक साथ कर देंगे। इस तरह अपनी पत्नी को संतुष्ट कर वह व्यापार के लिए नगर चला गया। समय बीतता गया और जब एक दिन साधु वैश्य ने सखियों के साथ कलावती को देखा तो उसे लगा कि उसकी कन्या किशोरावस्था को पार कर युवा हो गई है, अब तो शीघ्र ही इसका विवाह कर देना चाहिए। सो साधु वैश्य ने तुरंत अपने दूत को बुलाकर कोई अच्छा वर ढूंढने की आज्ञा दी। दूत आज्ञा पाकर कंचन नगर गया, जहां उसे सौभाग्य से एक बड़ा ही सुयोग्य वैश्य युवक मिल गया, जिसे वो साधु वैश्य के पास ले आया। अपनी कन्या के लिए उस सुयोग्य वर को देखकर साधु वैश्य बड़ा ही प्रसन्न हुआ और उचित मुहूर्त निकालकर बंधु बांधवों सहित उस युवक के साथ अपनी कन्या कलावती का पाणिग्रहण संस्कार संपन्न कर दिया। लेकिन दुर्भाग्य, श्री सत्यनारायण का व्रत पूजन फिर भूल गया। फिर क्या, प्रतिज्ञा भ्रष्ट को सीख देने के लिए भगवान के कोप से उसे दुख भोगना ही पड़ा। हुआ यूं कि विवाह के कार्य से निपटकर जब जामाता को साथ लेकर साधु वैश्य व्यापार हेतु राजा चंद्रकेतु के नगर में पहुंचा तो उसके भोग का आरंभ हो गया। श्री सत्यनारायण की माया से प्रेरित एक चोर राजा का धन चुराकर भागा जा रहा था। जब उस चोर ने देखा कि राजा के सैनिक उसका पीछा कर रहे हैं तो उस चोर ने जहां साधु वैश्य अपने जामाता के साथ बैठा था वहीं राजा का धन छोड़ आगे भाग गया। राजा के सैनिकों ने वैश्य के पास राजधन देखा तो उन्होंने ससुर जमाई दोनों को पकड़ लिया। दोनों बहुत गिड़गिड़ाए लेकिन सैनिकों ने उनकी एक न सुनी और दोनों को बंदी बनाकर राजा के सामने ला उपस्थित किया। सैनिक बोले कि इन दोनों ने ही महाराज आपका धन चुराया है, इन्हें दंड दीजिए। राजाज्ञा से उन्हें कठोर कारागृह में बंद कर दिया गया और जो धन उनके पास था वो भी छीन लिया गया। इधर ये कारागृह में बंद दुख भोग रहे थे, उधर कलावती और लीलावती भी कष्ट से न बची। घर पर जो धन और आभूषण थे चोर चुरा ले गए, अन्न वस्त्र भी न छोड़ा। शारीरिक और मानसिक पीड़ा से दुखी मां बेटी भूखी प्यासी जीवन काट रही थी। एक दिन पेट की आग से पीड़ित पुत्री कलावती भोजन प्राप्त करने की आशा से एक ब्राह्मण के घर गई जहां श्री सत्यनारायण का पूजन हो रहा था। वो वहीं बैठ गई, कथा सुनी और प्रसाद ग्रहण कर जब घर लौटी तो लीलावती ने पूछा, इतनी रात गए तक तू कहां रही, तेरे मन में क्या है? कलावती बोली, मैं ऐसी वैसी जगह नहीं गई थी मां, मैं तो एक ब्राह्मण के घर गई थी जहां श्री सत्यनारायण भगवान की कथा चल रही थी। मैं वो कथा सुनकर और प्रसाद लेकर आई हूं। कन्या के मुख से श्री सत्यनारायण के पूजन की बात सुनकर लीलावती को ध्यान आया कि संकल्प लेकर भी उसका पति वचन का पालन न कर सका। उसने तुरंत अपने मन में श्री सत्यनारायण के व्रत पूजन का निश्चय किया और श्रद्धा सहित जो भी उस समय मिल सका उसी के साथ उसने श्री सत्यदेव का पूजन किया और प्रार्थना की कि हे प्रभो, हम सबके अपराध क्षमा करो, मेरे पति और जामाता दोनों शीघ्र घर आ जावें, ऐसी कृपा कर दो स्वामी। प्रभु तो भावना के भूखे झट प्रसन्न हो गए और उन्होंने राजा चंद्रकेतु को स्वप्न में आज्ञा दी कि हे राजन, दोनों वैश्यों को कल प्रातः छोड़ दो, अन्यथा तुम्हारा अनिष्ट होगा। उनका जो धन छीना है उसे भी उन्हें लौटा दो, नहीं तो तुम्हारा धन वैभव राज्य पुत्रादि सब नष्ट हो जाएंगे। और ये कहकर भगवान अंतर्धान हो गए। राजा ने स्वप्न की सारी बात सभा में सभासदों को सुनाई, सब विस्मित। दोनों वणिकों को कारागार से मुक्त कर सभा में बुलाया गया। राजा ने बड़े ही विनय स्वर में कहा, हे महानुभाव, भाग्यवश आप दोनों को ऐसा दुख प्राप्त हुआ, अब आप निर्भय हो। और ऐसा कहकर राजा ने उन्हें नए नए वस्त्राभूषण दिए तथा जितना भी धन उनका छीना था उससे दूना देकर उन्हें सादर विदा किया और दोनों वैश्य सानंद अपने घर की ओर चल पड़े।
इति श्री स्कंद पुराणे रेवाखंडे श्री सत्यनारायण व्रत कथायाम तृतीयोध्याय।
बोलो श्री सत्यनारायण भगवान की जय। सूत जी बोले, वैश्य ने अभी मंगलाचार्य के साथ अपनी यात्रा आरंभ की ही थी कि भगवान ने फिर उस वैश्य के मन को टटोलने के लिए कि इसके हृदय में अब भी सत्य स्थापित हुआ या नहीं, वो एक दंडी स्वामी का वेश धारण कर बोले, हे साधु, तेरी नाव में क्या क्या है? वणिक हंसता हुआ अभिमान भरे स्वर में बोला, क्यों पूछता है रे दंडी, क्या कुछ धन प्राप्ति की इच्छा है? निराशा होगी तुझे, मेरी नाव में तो केवल लता और पत्ते हैं। दंडी के रूप में भगवान ने कहा, तथास्तु, ऐसा ही हो। और वो कुछ दूर जाकर समुद्र के किनारे बैठ गए। दंडी के जाने पर वैश्य ने नित्य क्रिया करने के बाद जब नाव को पानी में ऊंचा उठा हुआ देखा तो वो अचंभे में पड़ गया। नाव में लता पत्ते देखकर मूर्छित हो गया और मूर्छा दूर होने पर जब वो उठा तो विलाप करने लगा। तब उसके जमाई ने कहा, ये उन्हीं दंडी का शाप है, उन्हीं की शरण में चलें, हमारी धन संपदा उनके द्वारा ही मिलेगी। जमाई के वचन सुनकर अत्यंत भक्तिभाव से वैश्य दंडी स्वामी के पास जाकर उन्हें नमन करता हुआ बोला, मेरे अहंकार, मेरे असत्य भाषण को क्षमा करें महाराज। यह सुनकर दंडी वेशधारी भगवान ने कहा कि हे वणिक, सत्य की अवज्ञा, असत्य भाषण, लालच और लोभ के वशीभूत होकर तू बार बार दुख प्राप्त कर रहा है। तो साधु बोला, हे प्रभो, आपकी माया को ब्रह्मादिक देवता तक नहीं जान पाए तो मैं कौन? मुझे ज्ञानी को क्षमा करे नाथ, मैं अब अपनी पूरी सामर्थ्य के अनुसार सत्य व्रत धारण करूंगा, आपकी पूजा करूंगा, मेरी नौका में जो कुछ था उसे पहले जैसा कर दें। करुणा सागर द्रवित हो गए और उसकी इच्छानुसार वर देकर अंतर्धान हो गए। वणिक जब अपनी नाव के पास आया तो उसने अपनी नाव को पहले जैसा धन से परिपूर्ण पाया। वो बड़ा प्रसन्न हुआ। उसने तुरंत जमाई और साथियों सहित वहीं श्री सत्यनारायण का पूजन किया और फिर अपने नगर की ओर जाने के लिए नाव को आगे बढ़ाया। नगर के निकट पहुंचने पर वैश्य ने अपने दूत को अपने आने का समाचार देकर घर भेज दिया। दूत से अपने पति और जामाता के सकुशल आने का समाचार पाकर लीलावती ने बड़े हर्ष के साथ श्री सत्यदेव का पूजन पूरा कर अपनी पुत्री कलावती से कहा कि हे पुत्री, मैं तेरे पिता और पति के स्वागत के लिए पहले जा रही हूं, तू पूजन समाप्त कर आ जाना। लेकिन कलावती अपने पति और पिता के आने के समाचार से इतनी भावुक हो गई कि वो पूजा जल्दी जल्दी समाप्त कर बिना प्रसाद लिए ही चल पड़ी। पूजा के प्रति भाव में अभाव के कारण श्री सत्यदेव की माया के प्रभाव से ऐसा हुआ कि जब कलावती वहां पहुंची तो न उसे उसका पति दिखाई दिया न नौका। अपने पति को न देखकर वो विलाप करती हुई वहीं गिर पड़ी। वैश्य को भी ऐसा लगा जैसे जमाई समेत नौका पानी में डूब गई हो। तो नौका को डूबा जान और कन्या को मूर्छित देख साधु वैश्य भी कांप गया। नाव के नाविक मल्लाह भी चिंतित थे, लेकिन किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि क्या करें। लीलावती भी अपनी कन्या की ये दशा देख दुख से अधीर बिलखती अपने पति साधु वैश्य से बोली कि ये कैसे हो गया? नाव सहित अपना जमाई कहां चला गया? नाव क्यों डूबी? कोई अपराध हुआ है हमसे? और उसने पुत्री से लिपटकर ऐसा विलाप किया कि जो भी जन वहां थे उनका संताप देख कोई भी आंसू न रोक सका। कलावती के मन में अपने पति के न रहने का ऐसा गहरा शोक था कि वो अपने स्वामी की पादुका लेकर सती होने को तत्पर हो गई। साधु वैश्य पुत्री की यह दशा देख बहुत दुखी था। पत्नी सहित शोक में डूबा हुआ साधु विचार करने लगा कि कहीं मैं श्री सत्यदेव की माया से भ्रांत तो नहीं हो गया? जो भी हो, मैं यथाशक्ति पूजा कर इस अशांत स्थिति को शांत करूंगा। और उसने बंधु बांधवों को बुलाकर सबको अपना मनोरथ बताया तथा धरती पर लेटकर श्री सत्यदेव को बारंबार प्रणाम किया। सही भाव को देखकर प्रभु प्रसन्न हो गए। बोले, तेरी पुत्री प्रसाद को त्याग कर पति दर्शन को चली आई, इसी कारण इसका पति अदृश्य हो गया। तेरी कन्या घर जाकर सत्यदेव को नैवेद्य अर्पित कर प्रसाद लेकर लौटे तो इसका पति इसे अवश्य मिलेगा। कलावती ने नभमंडल से आती आकाशवाणी सुनी तो उसमें नए जीवन का संचार हो गया। तुरंत घर गई और प्रसाद लेकर जब वो वहां लौटी तो उसे उसका पति उसके सामने खड़ा मिला। उसने प्रभु को बारंबार प्रणाम किया और मुदित मन से पिता से बोली, अब क्या विलंब, घर चलें? पुत्री को प्रसन्न देख साधु वैश्य को बड़ा संतोष मिला। वो बंधु बांधवों सहित विधि विधान से श्री सत्यनारायण स्वामी का पूजन कर धन जन सहित अपने घर पहुंचा। फिर तो वो हर संक्रांति या पूर्णिमा के दिन श्री सत्यदेव का विशेष रूप से पूजन करने लगा और श्री सत्यदेव की कृपा से इस लोक का पूरा सुख भोग कर परलोक को प्राप्त हुआ।
इति श्री स्कंद पुराणे रेवाखंडे श्री सत्यनारायण व्रत कथायां चतुर्थोऽध्यायः। बोलो श्री सत्यनारायण भगवान की
जय।
सूत जी बोले, हे ऋषिगण, अब जो कथा मैं तुम्हें सुना रहा हूं वो एक ऐसे राजा की है जो बड़े सुचारू रूप से प्रजा का पालन करता था। उसका नाम था तुंगध्वज। लेकिन इस राजा ने भी प्रभु प्रसाद की अवहेलना कर बड़ा दुख पाया। हुआ यह कि एक बार राजा तुंगध्वज वन्य पशुओं को मारकर एक बरगद के पेड़ के नीचे विश्राम के लिए आकर बैठा तो क्या देखता है कि कुछ ग्वाले भक्तिभाव से अपने संबंधियों सहित श्री सत्यनारायण का पूजन कर रहे हैं। देखकर भी राजा पूजा में सम्मिलित नहीं हुआ, फिर भी ग्वालों ने भक्तिभाव पूर्वक प्रसाद राजा के पास रख दिया। किंतु अभिमानी राजा ने प्रसाद ग्रहण नहीं किया और घर लौटकर महान दुख का भागी बना। पुत्र धन धान्य वैभव सब कुछ नष्ट हो गया। तब कहीं जाकर उसके मन में यह विचार आया कि हो न हो यह श्री सत्यदेव के पूजन और प्रसाद की अवहेलना का ही फल प्राप्त हुआ है मुझे। सो वो तुरंत उसी बरगद के पेड़ के पास जा पहुंचा जहां ग्वाले प्रभु के कीर्तन में तल्लीन थे। ग्वालों के बीच बैठकर उसने श्री सत्यनारायण का पूरे मन से पूजन अर्चन किया और प्रसाद लिया। इस तरह वो फिर धन वैभव पुत्रादि से युक्त हुआ। सो हे ऋषियों, जो भी सत्य व्रत को विधि विधान से करता है, फलदायिनी इस कथा को भक्तिभाव से सुनता है, श्री सत्यदेव की अनुकंपा से वो दरिद्री हो तो धन संपत्ति पाता है, संतानहीन हो तो संतान, बंदी हो तो बंधन मुक्त हो जाता है, भयभीत हो तो निर्भय होकर मन वांछित फल प्राप्त कर सत्यलोक का अधिकारी होता है। मैंने भली भांति इस व्रत पूजन और कथा के विषय में आप लोगों को बता दिया है, जिसके फलस्वरूप मनुष्य सब दुखों से मुक्त होता है। विशेष रूप से कलयुग में यह व्रत विशिष्ट फलदायी होगा। कोई प्रभु को सत्य रूप नाम से पुकारेगा, कोई काल कहकर, तो कोई सत्यनारायण और कोई सत्यदेव। प्रभु तो भाव के भूखे हैं, उन्हें किसी भी नाम से पुकारो वो तो भक्तों के मनोरथ पूरे करने वाले हैं। इसलिए जो भी इस पावन कथा को सुनेगा उसके सभी पाप कट जाएंगे। जिन्होंने पूर्व काल में सत्यदेव का व्रत पूजन किया उनके आगे के जन्मों का वृत्तांत इस प्रकार है। शतानंद ब्राह्मण सुदामा के रूप में जन्मा और श्री कृष्ण का प्रेम पाकर मुक्त हुआ। लकड़ी बेचने वाला भील गोहराज निषाद हुआ, जो श्री रामचंद्र का आतिथ्य कर विषादों से मुक्त हुआ। उल्का मुख राजा दशरथ के रूप में जन्मा और राम जैसे पुत्र को प्राप्त कर धन्य हो गया। साधु नाम का वैश्य मोरध्वज राजा बना, जिसने श्री कृष्ण को अपने पुत्र की बलि देकर मुक्ति प्राप्त की। राजा तुंगध्वज भागवत कर्म करने वाला स्वयंभू मनु हुआ, अर्थात जिसने सत्य व्रत धारण किया उसके प्रतिकूल कोई नहीं टिका, उसे सारे भवशूलों से मुक्ति मिली। तो जैसे इन सबको सुख संपत्ति मिली वैसी आपको भी मिले, इसी शुभकामना और प्रार्थना के साथ श्री सत्यदेव भगवान की ये कथा समाप्त होती है।
इति श्री स्कंद पुराणे रेवाखंडे श्री सत्यनारायण व्रत कथायां पंचमोध्यायः।
बोलो श्री सत्यनारायण भगवान की
जय।
भक्तजनों, आइए अब हम सब मिलकर श्री सत्यनारायण भगवान की आरती करें।